बेहद बेहद की पार्लियामेंट, वहाँ पार्लियामेंट की दरकार ही नहीं। पार्लियामेंट तो प्रजा के ऊपर प्रजातंत्र राज्य में बनाई जाती है, वहाँ तो एक ही राजा का राज्य होता है, पार्लियामेंट की क्या दरकार, जो एमपी वगैरह चुनाव करना पड़े। और सुपन खां चौपड़ है, चौपड़ ऐसा चौकोर पट्टी बिछाई जाती है और उसमें गोटी डाली जाती है, नंबर बढ़ते जाते हैं, गोटी भी आगे बढ़ती जाती है, उस आधार पर हार और जीत होती है। पासा जिसको कहते हैं, पासा फेंकना, पहले पुराने जमाने में चौपड़ का ही खेल बहुत होता था राजाओं महाराजाओं में। बाद में फिर ये जब से मुसलमान आए तो शतरंज निकली, फिर क्रिश्चियंस आए तो ढेर के ढेर खेल निकल पड़े। और जब भी आता हूँ, जहाँ कहीं से भी आता हूँ, जब भी आता हूँ तो त्रिमूर्ति साथ होनी चाहिए, माने तीनों ही आत्माएं साथ होती हैं, राम वाली आत्मा भी साथ होती है, कृष्ण वाली आत्मा भी साथ होती है, और दोनों के बीच में जो न्यूट्रल पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो भी साथ होती है। क्योंकि मैं तो बिंदी हूँ, बिंदी के आने ना आने का कोई मतलब ही नहीं साबित होता, तो जब भी प्रत्यक्ष होऊंगा तो तीन मूर्तियों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होना है, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। और नेपाल में जन्म लिया, हाँ नेपाल में जन्म लिया तो कोई गलत बात थोड़ी हो गई। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं, तो नेपाल भी एक तो हद का है जो पहाड़ों पर दिखाया गया है, वो तो स्थूल पहाड़ हो गए, एक बेहद की ऊंचाई में है बेहद का नेपाल जो एडवांस पार्टी में है, ऊंची स्टेज वाले हैं, ज्ञान की मनन चिंतन मंथन की ऊंची स्टेज में रहते हैं, वहां मम्मा बाबा ने जाके जन्म लिया, इसलिए मुरली ने बोला है गांधी मरा, राजकोट में जाकर कोई बड़े साहूकार कांग्रेसी के घर में जन्म लिया, तो जरूर एडवांस पार्टी में कोई ज्ञान का साहूकार होगा, अर्थात राम वाली आत्मा, उसके बुद्ध रूपी पेट में कृष्ण वाली आत्मा प्रवेश कर जाती है, जन्म लिया, बाद में प्रत्यक्ष हो जाती है।
बाबा कांग्रेस के पास जन्म लिया ऐसे क्यों बोला?
कांग्रेस गवर्नमेंट बड़ी गवर्नमेंट है ना, शुरुआत से लेकर के अब तक भी उसका दबदबा चला चला आया है। एक कांग्रेस पार्टी है और एक कांग्रेस कहते हैं सरकार को।
बाबा
जिनके माँ बाप ज्ञान में नहीं चलते हैं और माँ बाप ने अगर शरीर छोड़ दिया लेकिन बच्चा तो ज्ञान में चलता है, माँ बाप ने शरीर छोड़ दिया वो तो फट से जाकर के आत्मा दूसरी जगह जन्म ले गई। अब बच्चे हैं अगर ज्ञान में पक्के हैं तो कुछ भी नहीं करने की दरकार है उनको, बाबा की याद में बैठेंगे और ब्राह्मण परिवार को याद में बैठाएंगे और क्या करना है। और तो सब अंधश्रद्धा अंधविश्वास की बातें हैं, भक्ति मार्ग में जो कर्मकांड किए जाते हैं उनसे फायदा तो कुछ भी नहीं। अब रही बात लोकलाज में लोगों का मुकाबला करने की, कि जितना ज्ञान बल बाला होगा योग बल बाला होगा तो मुकाबला करेगा, कम ताकत होगी तो मुकाबला नहीं करेगा। हाँ, तोड़ निभाने का मतलब क्या है? दुनिया को दिखावा किस बात का करना है कि हम भगत हैं? है? तो वो दिखावा करो जिससे बुद्धियोग का दिखावा हो जाए कि हाँ योगी है ज्ञानी है। जो दुनिया भस्म होने वाली है उस भस्म होने वाली दुनिया के नीति रस्म रिवाजों के ऊपर चलना ये तो बड़े धोखे की बात है। जो दुनिया सामने आने वाली है और हमने समझ लिया है कि ये दुनिया सामने आने वाली है तो हम भस्म होने वाली दुनिया के पीछे क्यों जाएं? ठीक है, कर्मकांड कुछ नहीं हुआ नहीं
बाबा। आत्मा परमात्मा और प्रकृति ये तीनों के बारे में जानना ही नॉलेजफुल कहेंगे ना। तो
प्रकृति के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में और सत्य के बारे में नहीं जानना?
ऐसा अभी समझ में प्रकृति के प्रकृति ये तीनों के बारे में पूरा ज्ञान होना ही संपूर्ण नॉलेजफुल बोला। माना प्रकृति
माने पांच तत्व
शरीर का बारे में,
पांच तत्वों से शरीर बनता है।
और बाबा बोला शेर आया शेर आया शेर आया ऐसा बोला एक बार वाले, माना तीन बार बोला ना।
हाँ।
मना कब कर
हाँ तो प्रत्यक्षता तीन बार करते हैं, चौथी बार में तो हो ही जाता है। चार बार शूटिंग होती है, सर्प भी तीन चार बार खल त्याग करता है, तो ऐसे यहाँ भी है। पहली बार चिल्लाया भगवान आया भगवान आया, दूसरी बार चिल्लाया भगवान आया, तीसरी बार चिल्लाया भगवान आया ही नहीं। आखिरी ना आना तो है कि नहीं आना है? जब आना है तब कोई नहीं चिल्लाता, जब विनाश होना होगा विनाश कब होगा? जब सब विनाश की बातों से निश्चिंत तो हो जावेंगे तब ही विनाश हो जाएगा।
विष्णु प्रत्यक्ष होने के बाद
विष्णु जो है उस समय विषय विकार रहेंगे, जिस संगठन के बीच में विष्णु प्रत्यक्ष होगा उस संगठन के बीच में कोई भी भांति में विषय विकार रहेंगे तो ये प्रश्नोत्तर कहाँ से पैदा होते हैं? बुद्धि में कचरा भरा हुआ है तो प्रश्नोत्तर पैदा होते हैं। नहीं तो बाबा तो मुरली में कहते हैं तुम बच्चे क्या प्रश्न करेंगे बाप से, बाप तो हर बात का खुद ही ہر بات کا جواب ٹائم پر دیتے رہتے ہیں. تین مورتیوں کی پرتکشتا ہونا مانا ترمورتی شیو باپ کی پرتکشتا ہونا, پھر کچھ بھی ڈسکس کرنے کو نہیں رہ جاتا. باپ خود ہی سب کچھ بتاتے ہیں. بابا کو کاغذ کی مرلی یا گرنتھ پڑھ کر کے سمجھاتے ہیں کیا؟ برہما کے مکھ سے بولتے تھے, وہاں بھی مکھ سے ہی بولتے تھے, بولنے والا الگ تھا, جو بولتا تھا لکھنے والے الگ تھے, ابھی بھی پڑھنے والا الگ ہے, آتما لکھنے والے الگ ہیں, اور جو کلیریفیکیشن دینے والا ہے وہ الگ ہے. اور لکھتے کیوں نہیں تھے؟ پانچ سات پیج بیٹھ کر کے لکھتے تھے. کراچی سے پہلے سے مرلی نکلتی چلی آئی ہے, پہلے بابا مرلی چلاتے نہیں تھے, پانچ سات پیج بیٹھ لکھتے تھے, باپ لکھاتے تھے. تو مرلی میں آیا ہے ہاں کاپیاں نکلتی تھی.
باپ لکھاتے تھے, باپ لکھاتے تھے تو باپ تو کراچی نہیں رہتے, ماتاؤں میں پرویش کر کے لکھاتے تھے.
کوئی ضروری ہے کہ پرشوں میں ہی پرویش کیا جائے گا؟ پتا نہیں چلتا تھا, اس میں پرویش کر کے لکھاتے تھے, ان کو پتا نہیں چلتا تھا. برہما بابا بیٹھ لکھتے تھے, تو یہ پوتر آتما میں پرویش کر کے باپ لکھاتے تھے. اور کیا سمجھ میں آیا کچھ بولا انہوں نے؟
ایئرپورٹ
ایئرپورٹ
آشرم نہیں آشرم
آشرے مانے آدھار لینا, آشرے لینا مانے آدھار لینا, ٹھکانا لینا آشرم نہیں ہے, آشرے لینا ٹھکانا لینا آشرم نہیں, آشر آسرا لینا آسرا. کیا بنائے گئے؟
ایجپٹ
پیرامڈ. ہاں جی, سات دنیا کے بڑے بڑے ونڈرس ہیں, ان میں مصر کے پیرامڈ بھی ہیں, جیسے ہندوستان کا تاج محل ہے, چین کی بڑی دیوال ہے, ایسے منشیوں کے بنائے ہوئے سات پرکار کے بڑے بڑے ونڈرس ہیں, جو ونڈرس دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں پیسے خرچ کر کے. ہاں تو ٹھیک ہے, بنائے گئے ہوں گے, کوئی بڑی بات نہیں. ہاں جیسے جیسے یہ حد کے ونڈرس بنائے گئے ہیں ایک کے بعد ایک. آج سے 300-400-500 سال پہلے شاہجہاں نے تاج محل بنوایا, یہ تو کلیوگ کے مدھیانت میں آ کر کے بنا. ایسے ہی دواپر یوگ کے آج سے ہی یہ منشیوں کے دوارا بنائے جاتے رہے. یہ تو حد کی بات ہو گئی. لیکن بے حد براہمنوں کی دنیا میں بھی منشی گروہوں نے کمال کر کے دکھائی ہے ایشوری سیوا کے معاملے میں. کوئی نے راج یوگ شیبر نکالا, ڈیر کی ڈیر پردرشنی جاتی ہے دیکھنے کے لیے. کوئی نے کانفرنس نکالی, کوئی نے پردرشنی نکالی, کوئی نے پروجیکٹر شو نکالا. ایک کے بعد ایک کرشمہ نکالتے چلے گئے. ابھی لاسٹ میں کیا نکالا؟ میگا پروگرام. لیکن بڑے سے بڑا ونڈر کون تیار کرتا ہے؟ شیو بابا آ کر کے بڑے سے بڑا ونڈر تیار کرتے ہیں ہیون. جس کو دیکھ کر کے ساری دنیا چمکت ہو جائے گی. اور وہ ہیون بھارت میں ہی تیار ہوتا ہے. لکشمی نارائن کے چتر کے اوپر
لکش کو چھپا دیا پردہ ڈال کے لکشمی نارائن کے ڈیکوریشن.
ابھی پردہ اٹھنے والا ہے اس لیے پردہ ڈال دیا. یہ لوگ دکھاوا کرتے ہیں, یہاں تو پردہ ڈال دیا. اور ہاں بن جاؤ, بہت لمبا ٹائم ہو گیا نا کہ بننا چاہیے بننا چاہیے. ابھی تک کوئی بنا ہی نہیں اس لیے پردہ ڈال دیا. بابا نارائن ہے, نارائن میں اور بابا میں تو بہت فرق ہے. نارائن تو 16 کلا سمپورن سرگن سمپن سمپورن اس تک مریادا پرشوتم ہوتے ہیں. اور بابا کی گن تو بالکل الگ ہے. بابا سرگن سمپن بن کے رہے. بابا تو کہتے میں کوئی سادھو سنت مہاتما بھی نہیں ہوں.
سکھ دھرم جو ہے وہ 6-8 سال کے پہلے استھاپت ہوا.
6-8 سال کے پہلے,
6-800 سال کے پہلے,
500-600 سال پہلے مہاتما
جو سکھ دھرم کی آتما ہے پرندہ سے کب نکلا؟
پرندہ سے 500 سال پہلے ہی آئی.
تم لوگوں کو کم جنم ہو گیا نا؟
کم جنم تو ہوتے ہی ہے, اب تو 84 جنم ہوتے ہیں.
تو مطلب ودھرمی دھرم جو ہے اسلام یا کرسچین دھرم ان لوگوں کے آتماؤں کو زیادہ جنم, اور سودرمی آتما جو ہے سکھ دھرم کے ان لوگوں کو کم جنم.
لیکن ان میں بھی دو طرح کے ہیں نا, ایک ہے کنورٹ ہونے والے اور ایک ہے اپنے دھرم کے پکے. ہر دھرم میں دو پرکار کے ہیں. تو سکھ دھرم میں بھی دو پرکار کے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو 84 جنم لیتے چلے آئے, وہ بیج روپ آتما ہے. سکھ دھرم کی بھی بیج روپ آتما ہے جو 84 جنم لیتی ہے. منش گروہوں نے تو ٹائٹل رکھوائے لیا ہے, جیسے انہوں نے اپنے اوپر ٹائٹل رکھ لیا ہے شیو اہم برہما اسمی, میں ہی برہما ہوں میں ہی شیو ہوں. وہ تو جھوٹا ٹائٹل ہے. 108 की माला वो कोई बनाते थोड़ा ही है संगठन। यहाँ तो शिव बाबा आकर के प्रैक्टिकल में 108 दुनिया से चुनिंदा चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन बना के तैयार करके दिखाते हैं, देखो ये दुनिया की सबसे पावरफुल आत्माएं हैं, इनसे कोई भी टक्कर नहीं ले सकता। वो सिर्फ झूठा प्रोपोगंडा करते हैं गुरु लोग, और यहाँ बाबा प्रोपोगंडा नहीं करता, प्रैक्टिकल काम करके दिखाता है। वो नौ रत्नों की बात है, नौ रत्नों में नंबर वार है।
ओरिजिनल आया तो डुप्लीकेट भी आते हैं ना,
ओरिजिनल आता है डुप्लीकेट भी आते हैं, भक्ति मार्ग में सारे ही डुप्लीकेट आ गए। तो एक शिव बाबा सदा कायम है तभी तो ये डुप्लीकेट आ गए ढेर के ढेर, अगर वो ओरिजिनल भी न रहता दुनिया में तो डुप्लीकेट कहाँ से आ जाते। इस सृष्टि पर सदा कायम शिव बाबा ही तो है, तो डुप्लीकेट भी तैयार हो गए।
नौ
धर्म के बाबा है,
नौ धर्म
नौ धर्म के नौ मुखिया हुए तो डुप्लीकेट हो गए नौ।
धर्म में अच्छे बुरे हैं फिर क्यों धर्म को
है
धर्मियों को विकारों से तुलना की जाती है, अच्छे बुरे हर धर्म में है ना,
विकारों से तुलना क्यों किया जाता है।
अच्छे जो और विधर्मी हैं उनमें अच्छे पहुँचे कहाँ से, देवी देवता सनातन धर्म से जन्म लेते लेते पहुँचे या पहले से ही अच्छे थे बताओ।
पहले देवी देवता धर्म में अच्छे थे,
अच्छे थे, फिर वो जन्म लेते लेते जब वहाँ पहुँचे तब उन धर्म का फाउंडेशन पड़ा, हमेशा वो अच्छे नहीं थे। और
अभी भी हम देखे
हर धर्म में अच्छे हैं, सोलह कला संपूर्ण है कोई में
ऐसे नहीं, उनके वृत्ति में कोट नहीं है, उनके वृत्ति में कोट नहीं है,
कोट नहीं है उनके मुखिया में, उनका जो मुखिया है समझो क्राइस्ट है या मोहम्मद है या महात्मा बुद्ध है, उसमें खुटखोट है या नहीं है। अरे जब मुखिया में ही खोट है तो बीच वालों में और अंत वालों में तो जरूर होगी। और
जाने वाला जो अनेक
जमीन पर रहेगा
ना,
उधर के प्रोफेसर है, उधर के लेक्चरर
है, जमीन पर रहेगा ना, जमीन पर कार्य बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे भी जमीन पर रहेगा
नीचे पर रहेगा
क्या कह रहे हैं प्रोफेसर तो आदर्श रहेंगे नहीं
पढ़ाई करने के लिए
ऊंच पढ़ाई दुनिया वाले कहते हैं या ज्ञान में चलने वाले कहते हैं, तो दुनिया वाले कहते हैं, तुम भी कहते हो।
बाबा
نہیں بابا نے ایسا بولا کوئی بچوں کی دو مہینے چٹھی نہیں آتی ہے تو بابا سمجھتے ہیں مر گیا, لیکن کوئی گیتا پاٹھشالا میں جاتے رہتے ہیں, کلاس کرتے ہیں, سنگٹھن کلاسز ہوتے ہیں مہینے مہینے یا سپتاہ سپتاہ, وہ سنگٹھن کلاس میں کہیں جاتے رہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پروف تو مل جاتا ہے, تو ان کو مرا ہوا تھوڑے ہی کہیں گے. اگر سال دو سال بھی کوئی پروف نہیں ملتا ہے تو کہیں گے مر گیا, مر گیا تو دوبارہ جنم لیا, دوبارہ جنم لیا تو پھر دوبارہ بٹی کرے. بٹی تو جہاں سے پہلے کی تھی وہی کرے جا کے.
غریب ہوتے ہیں,
اگر
کوئی بھی غریب ہوتے ہیں کوئی بھی کمپنی کو کرنا
پڑتا ہے, دوبارہ وہاں کا جانا
وہ باندھیلی ہے تو جیسے سن 47 تک یگ کے آج میں انتظار کیا تھا ایسے انتظار کرے. باندھیلا بنایا کس نے؟ اوپر والے نے بنا دیا ہے, اپنے اپنے کرموں کے آدھار پر ہی باندھیلے بنے, تو خوشی خوشی کاٹو بندھن کو, ٹائم آئے گا تو چھوٹیلے ہو جائیں گے, اور ہو سکتا ہے چھوٹیلے ہو جانے کے بعد پرانوں پرانوں سے تیکھے چلے جائیں.
ودیشوں نے جو ویوستھا بنائی ہوئی ہے اس کا سکھ تو ہم لے رہے ہیں نا.
ودیشوں نے کیا ویوستھا بنائی ہوئی ہے؟
جو بھی ہے الیکٹریسٹی ہے,
الیکٹریسٹی ہے. یہ کتنے ٹائم کا پمپ اینڈ سو ہے؟ یہ 100 سال کا پمپ اینڈ سو اسی میں خوش ہو گئے؟
ابھی تو ورتمان میں تو اس کا لابھ مل رہا ہے.
لابھ زیادہ آپ لے رہے ہیں
ہو رہا ہے نا,
لیکن دکھی لوگ کتنے ہیں جن کے پاس ابھی بھی پہنچی نہیں ہے. یہ تو بڑے بڑے جہاں مہانگر ہیں وہاں اس کی مہیا مل رہی ہے, وہ بھی پوری نہیں ملتی. ہندوستان میں ہافا بہت مار رہے ہیں, اتنے گاؤں میں بجلی پہنچ جائے گی, اتنے گاؤں میں پینے یوگی پانی کا انتظام ہو جائے گا, لیکن ہے کتنا؟ پرسنٹیج تو بہت کم ہے, غریب تو اور ہی غریب ہوتے جا رہے ہیں.
بہشکار بھی ہم نہیں کر رہے ہیں, ویسے دیکھیں تو بہشکار بھی نہیں کر رہے
ہیں. بہشکار کرنے کی کیا درکار ہے؟ بہشکار تو خود ہی ہو جائے گا, جب آتی ہوگی تو اتھی کام تو ہو جائے گا. باپ کی پرتیکشتا میں سہیوگی بھی بنتے ہیں. ہاں اور کہاں کہاں دوڑے دوڑے پھر رہے
ہیں؟
کیا ہوا؟
ایک
بھارت میں نہیں دکھایا ہے دشاوتار میں؟ دشاوتار میں کوئی اوتار ہے ایسا؟ بھارت کو ہی سب نے فالو کیا ہے, چاہے جین دھرم ہے, چاہے کرسچن دھرم ہے, چاہے مسلمان ہے, نام اور روپ دوسرے دوسرے دے دیے ہیں فرشتاؤں کے, لیکن کام سب وہی ہے. سرشتی اناج ہے, سرشتی کا آج اور انت نہیں ہوتا ہے, نہ اس کا آدھ ہے نہ انت ہے, اس لیے یہ پرشن ہی بےوقوفی ہے کہ مرغی پہلے ہے کہ انڈا پہلے ہے. ہستی اناج ہے تو پھر مرغی بھی اناج ہے، انڈا بھی اناج ہے۔
پبلک بولتے ہیں مانو شریر مندر سے بنا ہوا ہے،
پبلک نہیں بول رہی ہے، ڈارون تھیوری میں نکالا، ڈارون نے یہ تھیوری نکالی کہ منشیہ پہلے بندر تھا، بعد میں ویگیانکوں نے وہ تھیوری کو جھوٹا ثابت کر دیا کہ بندر نہیں تھا۔ ہاں جی، بندروں جیسے سنسکار تھے منشیہ میں اور وہ آج بھی ہیں۔ کنٹرول وہاں کیا جاتا ہے جہاں انوشاسن ہینتا ہوتی ہے، کیا جہاں انوشاسن ہینتا ہی نہیں ہے وہاں نہ کنٹرولر ہوتا ہے نہ کنٹرول کرنے کی درکار ہوتی ہے، سب کچھ پرکرتی اپنے آپ مہیا کرتی ہے، پرکرتی کا کنٹرول چلتا ہے، سارا آٹومیٹک سارا کاری چلتا ہے۔ اسی لیے جھاڑ کے چتر میں اتوا سیڑھی کے چتر میں لکشمی نارائن کو کوئی چھتر نہیں دکھایا ہے، ان کو کوئی راج سنگھاسن نہیں دکھایا ہوا ہے جس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو، وہاں کوئی سنگھاسن پر بیٹھ کر کے کنٹرول کرنے کی درکار ہی نہیں پڑتی، کیونکہ ہر آتما سوئم ہی کنٹرولڈ ہے، ہر آتما کا آتما کے اوپر شاسن ہے۔ دو کلائیں جب کم ہو جاتی ہیں تو شاسن کی شروعات ہوتی ہے رام راجی میں، رام راجی میں چھتر چھایا دکھائی گئی ہے، سنگھاسن دکھایا گیا۔
ہاں
اسکول کی بات
نہیں ہے،
سوکھم وطن نہیں ہے، لیکن یہ ڈھیر کے ڈھیر جب ایٹم بم پھٹیں گے، پرتھوی کے اوپر بھوکمپ آئیں گے، ارتھ کویک ہوں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں گریں گی، اچانک لوگوں کی موتیں ہوں گی، تو یہ آتمائیں کہاں رہیں گی؟ شریر تو ان کو ملے گا نہیں، شانتی دھام میں نہیں جائیں گی سیدھی۔ جو اکالے موت میں ہائے ہائے کر کے شریر چھوڑنے والے ہیں وہ شانتی دھام جائیں گے، وہ لٹک جائیں گے تھوڑے سمے کے لیے، کہاں لٹکیں گے؟ سوکشم اسٹیج ان کی بن جائے گی، ساکار دنیا میں ان کو جنم نہیں ملے گا، ہاں دوسروں میں پرویش کر کے پارٹ بجاتے رہیں گے، ڈھیر کے ڈھیر نکلیں گے، کروڑوں کی تعداد میں نکلیں گے۔ اس لیے بتایا ایک ایک میں انیکوں انیکوں آتمائیں پرویش کر کے پارٹ بجائیں گی۔ اس لیے آتم کی استھتی دھارن کرنا بہت ضروری ہے، تھوڑی بھی دیہبان کی استھتی ہوئی اور کوئی نہ کوئی ودربی آتما پرویش کر جائے گی، پرویش کر کے پھر تنگ دکھی کرتی رہے گی۔ بار ڈرامہ میں تو انیک جنم ہے نا، یہاں تو ایک ہی جنم میں سب کچھ دکھنا ہے چل رہا ہے، بار ڈرامہ میں تو 63 جنم ہے، وہاں 33 کروڑ دیوتاؤں میں سے ایک ایک میں سول کا پرویش ہوتا رہتا ہے۔ جو دوسرے دوسرے دھرم کی آتمائیں ہیں پرم دھام سے اترتی ہیں، وہ اترتے ہی ترنت گرو سے جنم تو لیتی نہیں، تو کس میں پرویش کریں گی؟ انہیں 33 کروڑ دیوتاؤں میں پرویش کرتی ہیں، یہ 33 کروڑ دیوتائیں ہی سب سے جاتی تمو پردھان بنتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم۔ تو 33 کروڑ اور 500 700 کروڑ کا अनुपात निकाल लो।
हाँ
जी हाँ जी
पाकिस्तान का पिता
पाकिस्तान का जितना
मोहम्मद अली जिन्ना
किससे प्रवेश किया
पाकिस्तान का पिता जिन्ना जो है तो उन्होंने केसीआर में प्रवेश करके और सेपरेट स्टेट का सेपरेट स्टेट मांग रहे हैं मुद्दे क्या वो संशय पूछ रहे हो
तो क्या उसका प्रूफ क्या है
इसको रिसर्च किया
किसी ने कुछ भी अखबार में लिख दिया बस सच में सच तो बता महाराज है
चला तो जिन्ना इन्ना होता है
क्या हुआ गोपाल भाई नहीं आएंगे तो वार्तालाप ही बंद हो जाएगा क्या और बाला चामुंडेश्वरी माता नहीं आएंगी तो पूछना बंद कर देंगे क्या पशु माने जो चार पांव वाले जानवर होते हैं उनको पशु कहा जाता है और जो पंखों से उड़ते हैं उन्हें पक्षी कहा जाता है जो बहुत थोड़ा उड़ पाते हैं और थोड़ी उम्र होती है उन्हें पतंगे कहा जाता है क्लास में कोई आते हैं तो उन्हें दूसरे कमरे में ले जाओ पहले समझाओ जाके उन्हें वो क्या समझेंगे वो तो समझेंगे इनका कोई गुरु है अब बेसिक कोर्स हो चाहे एडवांस कोर्स हो सच्चाई कोई कोर्स कहा जाता है सच्चाई बात सुनानी है बेसिक कोर्स कोई अलग नहीं है मुरली में जो कुछ बोला है वो ही एडवांस कोर्स है और मुरली में जो कुछ बोला है वो ही बेसिक कोर्स है मुरली से बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स हट करके है क्या है एक ही बात तो है बेसिक को अलग क्यों कर दिया सच्ची बात सुनाना, सच्ची बात बताना, देवताओं के बारे में, सृष्टि के बारे में, आत्मा के बारे में, पहले पहले बाप के बारे में परिचय देना। तो कोई नया आता है तो वो बाबा की भाषा, बाबा की ज्ञान की बातों को थोड़े समझ सकेगा, इसलिए उसको अलग उठा के दूसरे कमरे में ले जाना चाहिए। और अच्छा, अकेले याद में बैठना ज्यादा अच्छा लगता है या संगठित क्लास में सबके साथ बैठने में ज्यादा अच्छा लगता है, या बाबा जब याद में बैठाते हैं तब बैठना ज्यादा अच्छा लगता है? तीनों तरह जब याद कर दिया, चलते फिरते काम करते याद करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। कैसी स्थिति में याद में रहना ज्यादा अच्छा लगता है? हैं?
चलते फिरते काम करते
याद ज्यादा अच्छी लगती। बाबा बैठाते हैं तो उस समय ज्यादा अच्छी याद नहीं लगती? और जब सब लोग इकट्ठे होके क्लास में बैठते हैं याद करते हैं तब भी याद अच्छी नहीं लगती है? क्योंकि आपस में जब मिलते हैं तब तो वाइब्रेशन दुनिया वालों के मुकाबले ज्यादा अच्छे मिलने चाहिए। इसलिए क्लास में भी ज्यादा नहीं आते हैं।
लेकिन वास्तव में
संगम निधि लक्ष्मी नारायण को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, लेकिन वो तो
लेकिन वास्तव में 2036 तक ब्रह्मा और आत्मा को शरीर नहीं मिलता, निर्जीव ही नहीं है, अरे क्यों ऐसा हो गया? 16 कला संपूर्ण कैसा हो सकता?
जब है ही नहीं तो 16 कला संपूर्ण कैसे? वो तो विष्णु रूप हो गया, मिलकर के एक ही रूप हो गया, सत्य भी लक्ष्मी नारायण और संगम भी लक्ष्मी नारायण, दोनों मिलकर के ही तो विष्णु बनते हैं, कि सिर्फ अकेले राधा कृष्ण या राम सीता वाली आत्माएं बन जाएंगी? विष्णु
की बात ही नहीं,
विष्णु की ही बात है। संगम युग मान है विष्णु और सत्युग माना विष्णु नहीं, सत्युग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण, संगम युग में विष्णु इसलिए कि सत्युगी लक्ष्मी नारायण और संगम युगी लक्ष्मी नारायण दोनों मिलकर के विष्णु का रूप बन जाते हैं।
सत्युग रूप के बारे में बता देता हूं, सत्युग में जन्म लेते हैं ना ब्रह्मा की आत्मा, तो वो भी 16 कला संपूर्ण है वास्तव में, लेकिन शरीर नहीं है।
शुरुआत में 16 कला संपूर्ण है, लेकिन जैसे जैसे उनका जीवन व्यतीत होता जाता है कला कम होती जाती है। शरीर से सुख भोगने से या शरीर की कर्मेंद्रियों से सुख भोगने से कलाएं कम होती जाती हैं, और संगम युग में कला कम नहीं होती है, संगम युग में लगातार चढ़ती कला है। शरीर सड़ते जावेंगे, आत्मा पावरफुल होती जावेगी। तो संगम युग में और सत्युग में बहुत फर्क है। संगम युग में लक्ष्मी और नारायण का पुरुषार्थ और उनकी चमक सूर्यवंशियों के मुआफिक, सूर्य के मुआफिक तीखी होती जाएगी प्रत्यक्षता होने के बाद।
लेकिन शरीर ही नहीं है अभी तक, शरीर नहीं है ना उसको,
देखो
ब्रह्मा को,
उनकी बाकी नहीं है संगम युग में,
संगम की बाकी नहीं बात ना। हाँ। तो में जन्म लेने वाले आत्माओं को 16 कला संपूर्ण कैसे हो सकता है?
जन्म नहीं होगा,
मालूम होगा
शरीर नहीं होगा
शरीर कैसे होगा
जन्म लेंगे तो शरीर होगा
लेकिन सचिव में जब मेरे वाले आता है ना
हाँ जी
वो कैसे सोलह का संपूर्ण
जब बाप सोलह कला संपूर्ण है उनका शरीर सोलह कला संपूर्ण है तो बच्चों का शरीर सोलह कला संपूर्ण नहीं होगा फिर प्रश्न आया है सतयुग कृष्ण का सतयुगी कृष्ण का जन्म 2036 में होगा तो कहते हैं 18 वर्ष के बाद गद्दी मिलती है वहाँ गद्दी अद्दी की बात ही नहीं है सतयुग में कोई गद्दी होने की बात है झाड़ के चित्र में राधा कृष्ण को या लक्ष्मी नारायण को गद्दी दिखाई है सीढ़ी के चित्र में लक्ष्मी नारायण को या राधा कृष्ण को गद्दी दिखाई है 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 क्यों नहीं है क्योंकि वहाँ गद्दी की और छत्र छाया की बात ही नहीं है वहाँ तो सब सोलह कला संपूर्ण यथा राजा तथा प्रजा होते हैं वहाँ कोई किसी के ऊपर कंट्रोल करने की बात नहीं कोई के ऊपर राजाई करने की भी बात नहीं है असली स्वतंत्रता तो वहाँ है जैसे जैसे कलाएं कम होती जाती हैं, तब कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है इसलिए त्रेता युग में राम सीता को गद्दी पर बैठाया हुआ दिखाया गया है छत्र छाया दिखाई गई है और आगे द्वापर कलयुग में भी गद्दी होती है क्योंकि कलाएं कम होती जाती हैं, अनुशासनहीनता बढ़ती जाती है मनुष्यात्माएं कंट्रोल से बाहर होती जाती हैं, तो उनको कंट्रोल करने की दरकार पड़ती है और प्रश्न आया है कि मंदिरों में ब्राह्मण ही पूजा करते हैं परंतु शिव के मंदिर में माली ही क्यों पूजा करते हैं ऐसी तो कोई बात नहीं माली भी पूजा करते हैं सन्यासी भी पूजा करते हैं ब्राह्मण भी पूजा करते हैं दक्षिण भारत के जितने मंदिर हैं शिव के उनमें सब पुजारी ही पूजा करते हैं राधा कृष्ण के लिए बताया गया है कि जब 18 साल के हो जाएंगे तब उनको गद्दी मिलेगी बाबा जितना भी लक्ष्य देते हैं वो लक्ष्य संगम युग के लिए देते हैं वर्तमान जन्म के लिए देते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद अगले जन्म के लिए लक्ष्य देते हैं है? है? हाँ बाबा तो वर्तमान समय में पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वर्तमान में ही उनकी इसी जन्म में भविष्य में प्रारब्ध मिलनी है तो 2036 उस समय तो विश्व की बादशाही संसार में डिक्लेयर होती है 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की जो आखिरी आत्माएं हैं, जो बिल्कुल नास्तिक हैं, वो भी अंत समय में कहेंगी कि ये विश्व पिता आया हुआ है। उस समय कहा जाएगा विश्व का मालिक। विश्व की कोई दो चार आत्माओं ने भी नहीं माना तो उसको फिर विश्व का मालिक कहेंगे? विश्व में सभी आ जाते हैं या कोई रह जाएगा? विश्व में सभी आ जाते हैं। इसलिए 2018 में जन्म माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म, और 2036 में विश्व का राजभाग साबित हो जाता है। और हाँ जी, जो आत्मा सबसे पहले सत्व प्रधान बनती है, सत्युग के आदि में सत्व प्रधान है सबसे जास्ती, तो दुनिया में सबसे जास्ती तम प्रधान कब बनेगी? बीच में बनेगी या अंत में बनेगी? है एकदम अंत में, जब तमो प्रधानता की हद को दूसरी आत्माएं पार नहीं कर पाती हैं, क्योंकि क्रिश्चियंस के लिए बोला है न ज्यादा तमो प्रधान बनते न ज्यादा सतो प्रधान बनते। तो भली सृष्टि का अंत आ जाए तो भी क्रिश्चियंस आत्माएं उतनी तमो प्रधान नहीं बनेंगी जितनी देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं तमो प्रधान बनेंगी। अंतर क्या होता है कि देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं धीरे धीरे तमो प्रधान बनती हैं, और धर्मों की आत्माएं थोड़े समय में सतो प्रधान और थोड़े ही समय में तमो प्रधान बन जाती है। तमो प्रधान बनने में भी वो आत्माएं आगे देवी देवता सनातन धर्म की, आगे का मतलब ये नहीं कि पहले तमो प्रधान बन जाती, नहीं, जब सृष्टि का अंत होता है तो जो सबसे पुरानी सतो प्रधान आत्माएं थी वो ही सबसे जास्ती तमो प्रधान बनती है। इसलिए बोला है कि कृष्ण की आत्मा ही कंस बनती है और राम ही रावण बनता है। अति तामसी युग में, क्योंकि अति का विनाश भी किसको करना है? आत्मा स्वयं के लिए स्थापना भी करती है, आत्मा स्वयं के लिए विनाश भी करती है। तो आत्माओं के बीच में सबसे जास्ती स्थापना करने वाले कौन? अपने लिए सद्गुणों की स्थापना करने वालों में सबसे आगे नंबर किसका होगा? है राम कृष्ण का। इसलिए जब सृष्टि तमो प्रधान हो जाए तो तमो प्रधान सृष्टि में सबसे जास्ती तमो प्रधान स्टेज में रहने वाला रामकृष्ण की आत्माएं ही साबित होंगी। इसलिए कहा जाता है लोहे से लोहा टकराता है, विष से विष मारा जाता है। लोहा माने कलयुग, कलयुग लोहे समान है, तो कलयुग में शूद्र वर्ण में शूद्रता में सबसे आगे आत्माएं कौन सी जावेंगी? राम कृष्ण की आत्माएं शूद्रपने में सबसे आगे। वैसे भी कहा गया है पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, जो पहले नंबर का देवता है सो पहले नंबर का क्षत्रिय, जो पहले नंबर का क्षत्रिय है सो पहले नंबर का वैश्य, वो ही पहले नंबर का शूद्र बनता है। आदि की भी बात है अंत की भी बात है। आदि में राम वाली आत्मा के सूक्ष्म संकल्पों से, संचत्तर में बुद्ध रूपी धरणी में पूरी स्थापना और पूरे विनाश का खाका खिंच गया। वो सूक्ष्म रूप में समझने की बात है, फिर स्थूल रूप में भी ऐसे ही होता है संगठन बनाने की बात। वो 2018 तक की है। प्रश्न ये आया है कि जो आत्माएं प्रवेश कर रही है सूक्ष्म शरीर धारण करके, उनको अपना शरीर तो होता नहीं साकार में, इसलिए उनको तो पाप पुण्य लगता नहीं है। वो तो जैसे इंस्पिरेटिंग पार्टी हो गई, तो आखिरी जब धर्मराज की सजाएं खाएंगे तो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? जो सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली है और अभी प्रवेश करके पाप करा देती है, या अच्छे संकल्प चला करके पुण्य भी कराती है, सर्विस भी करा देती है, जैसे मम्मा बाबा की आत्माएं अभी प्रवेश करती है तो प्रवेश करके सर्विस भी कराती है, तो जो आत्माएं सूक्ष्म शरीरधारी हैं और कम नंबरवार हैं, वो धर्मराज की सजाएं खाएंगी तो कैसे खाएंगी? उसके लिए बताया है स्थूल शरीर धारण करके सजाएं खाएंगी। स्थूल शरीर धारण करेंगी किसमें? उन आत्माओं में स्थूल शरीर धारण करेंगी जो अपने शरीर से अलग रहना सीख जाएंगी। अभी तो हम अलग नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ करते करते जो सन्मुख बैठने वाले बच्चे हैं वो शरीर से अलग होना सीख जाएंगे, या प्रवेश करने वाली आत्मा पहले शरीर से अलग होना सीख जाएंगी। दो तरह की आत्माएं हैं, एक तो प्रवेश होने वाली, उनको सूक्ष्म शरीर है, बीज रूप स्टेज उनकी उतनी नहीं बन पा रही है। दूसरी एडवांस पार्टी की वो आत्माएं हैं जो प्लानिंग पार्टी की हैं, और वो प्लानिंग पार्टी वाली आत्माएं बीज रूप स्टेज वाली हैं, जिन्हें बाबा कहते हैं तुम बच्चे। तो वो जो जिन्हें तुम बच्चे कहते हैं वो पुरुषार्थ में तीखे हैं, या उनमें प्रवेश करने वाली आत्माएं ज्यादा पुरुषार्थ में तीखी है।
वो ज्यादा तीखे हैं क्योंकि जो प्रवेश करने वाले हैं वो तो आगे जाकर के जन्म लेंगे अगले जन्म में,
उनको तो यहाँ का पुरुषार्थी जैसा जीवन नहीं बिताना है। इसलिए जो सामुख बैठने वाली आत्माएं हैं जिनमें प्रवेश होता है, वो आत्माएं जब संपन्न बन जावेंगी तो संपन्न बनी हुई आत्मा तो अपने शरीर से अलग उड़ करके देखेगी, और जो प्रवेश करने वाली आत्मा है वो उसमें प्रवेश करके अपना पाप कर्म धर्मराज से भोगेगी, एक सेकंड में अनेक जन्मों की सजाओं का अनुभव करेंगी। और
संगम में कुछ ज्यादा से ज्यादा 100 साल का,
100 साल एक 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 सबसे
2036 के बाद तो नई दुनिया शुरू हो जाएगी। वहाँ तो सुख की दुनिया होगी या दुख की दुनिया होगी? जहाँ सुख की दुनिया होती है वहाँ दिन नहीं गिने जाते, वहाँ संबत एक 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 या संबत दो एक एक या चार एक एक ऐसे नहीं गिनेंगे। जहाँ दुख होता है वहाँ दिन गिने जाते हैं, जहाँ दुख होता ही नहीं वहाँ तवारीख होती ही नहीं है। इसलिए ये तो उस समय की बात है जब संगमयुगी लक्ष्मी नारायण कहो, संगमयुगी कृष्ण कहो, उनकी प्रत्यक्षता हो जाए। हाँ जी, और काम माने कामना, और कामना का कनेक्शन है मन से, इसलिए एक ही बात हो गई। और इंद्रिय जो हैं वो दसों इंद्रियां जो हैं वो मन से कनेक्टेड हैं। इंद्रियां अपना काम करती रहें और मन दूसरी जगह लगा हुआ हो तो इंद्रियों को न सुख भासेगा न दुख भासेगा, माने इंद्रिय के ऊपर जीत हो गई। अगर मन कंट्रोल कर लिया अलग से तो, इसलिए तीनों ही एक ही बातें हैं, अलग अलग नहीं है। चाहे मन जीते जगत जीत कह लो, चाहे इंद्रिय जीते जगत जीत कह लो, क्योंकि इंद्रियों में सबसे तीव्र इंद्रिय है काम इंद्रिय, जो कंट्रोल से बाहर हो जाती है, मन के कंट्रोल में नहीं रहती। तो कहने कहने का अंतर है, बात एक ही है। मन को 11वीं इंद्री कहा जाता है, परंतु उसका स्थूल रूप नहीं है, वो अति सूक्ष्म है, ज्ञानेन्द्रियों से भी जास्ती सूक्ष्म है। शास्त्रों में तो मन को ही आत्मा कहा है, मन रे आत्मा, बाबा भी यही बताते हैं, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। आत्मा को एकाग्र कर लिया माने मन को एकाग्र कर लिया, मन एकाग्र हो गया माने इंद्रिय अपने आप ही एकाग्र हो जाएंगी।